सूजिया दुल्हन को लेने,
मत्ती की इंजील उसका 12वां बाप, हम उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ेंगे और इस हिस्सा में से सीखेंगे, उस मौजजे को देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में किया सब्बत के रोज, के एक आदमी को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसे दुरुस्त किया, उसे शफा दी और किस तरह उसकी मुखालफत होती है। और यीशु मसीह बयान करता है कि इंसान की कदर कितनी अहम है। सो अगर आपने निकाल लिया इस हवाले को तो हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 12वां बाप उसकी 9वीं आयत से। और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर अल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो, एक ही भेड़ हो, और वो सब्बत के दिन गड़े में गिर जाए तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले। पस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और दूसरे हाथ की मानद, और वो दूसरे हाथ की मानद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इस वाक्या में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो रहम और तरस को ज्यादा पसंद करता है। जब हम इस हवाले को शुरू से पढ़ते हैं तो फकी फरीसी यीशु मसीह पर बार बार अल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं। यीशु मसीह के दौर के जो उसके दुश्मन, उसके मुखालफ क्या हैं? फकी फरीसी जो मजहबी रहनुमा हैं, वो बार बार यीशु मसीह का सामना करते हैं, वो बार बार यीशु मसीह की मुखालफत करते हैं, वो बार बार यीशु के मुखालफ खड़े होने के लिए सवाल पर सवाल और बयान पर बयान करते हैं। पीछे अभी अभी यीशु मसीह ने जब उसके शागिर्द खेत में से गुजर रहे हैं, रूट फलियां खा रहे हैं, तो भाले तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, तो वहां पर भी यही इल्जाम लगाया गया कि तेरे शागिर्द ऐसा क्यों करते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर तुम इसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद हूं, तो बेकसूरों के कसूरों को तुम कसूरावर ना ठहराते, उन पर इल्जाम ना लगाते। सो यहां पर यीशु मसीह वहां से, जब ये सारी गुफ्त हो चुकी है, वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया। यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी में बार बार यहूदियों के इबादत खाना में जाता है और जाकर उनको सच बताता है, क्योंकि यीशु मसीह का इस जमीन पर आने का एक ही मकसद था, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। यीशु मसीह उन तमाम शरा के आलमों, उन तमाम मल्लमों, उन तमाम हाकमों और तमाम उन मजहबी रहनुमाओं को ये बयान करना चाहता है कि जिसके बारे में तुम मतालिया कर रहे हो, जिसके बारे में तुम सदियों से पढ़ रहे हो, जिसके बारे में हर एक नबूवत, जिसके बारे में हर एक वादा, जिसके तुम इंतजार में हो, वो यहां पर मौजूद है। वो सब्बत का मालिक जिसने सब्बत को कायम किया, वो यहां पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी। اور پالوس رسول دوسرے کرنتھیوں 4 باب میں اس کی 4 آیت میں یہ بات کہتا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے یعنی شیطان نے بہت سے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے تاکہ وہ روشنی سے واقف نہ ہو، وہ نور سے واقف نہ ہو، اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ سو یسوع مسیح بار بار عبادت خانوں میں جاتا ہے، اور وہاں پر جانے کا مقصد یہی ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو کیا دے، نجات دے، گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، تاریکی میں بیٹھے ہوں کو نور کی خبر دے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو آزادی کا پیغام دے، جو اندھے ہیں ان کو آنکھیں دے۔ سو یسوع مسیح عبادت خانے میں جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ یسوع مسیح وہاں پر ایک شخص کو دیکھتا ہے جو لاچار ہے، جو ہو سکتا ہے جس کا بہت مذاق اڑایا گیا ہو کہ اس کا ایک ہاتھ درست نہیں ہے، ٹنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں جو بیماری ہے، اس بیماری کے باعث، اس کمی کے باعث ہو سکتا ہے لوگوں نے ساری بچپن سے لے کر اب تک اس کا مذاق اڑایا ہو، اسے نیچا گرایا ہو، اسے برے لفظوں سے، اسے بہت سے ناموں سے پکارا ہو۔ سو یسوع مسیح عبادت خانہ میں جاتا ہے کہ نجات دے، عبادت خانہ میں جاتا ہے کہ شفا دے، کہ جائے اور جا کر رحم اور ترس کی تعلیم دے۔ سو یہاں پر یسوع مسیح، جیسے آپ پڑھتے ہیں 4 باب میں، یوحنا کی انجیل 4 باب میں، کہ یسوع مسیح کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ کس کے لیے؟ اس سامری عورت کے لیے جو محبت کی تلاش میں تھی، جو پیار کی تلاش میں تھی، جو چاہتی تھی کہ اسے سچا جیون ساتھی مل جائے، جو چاہتی تھی کہ وہ روح اور سچائی سے اس مسیح کی عبادت کرے جس کے انتظار میں ہیں۔ تو یسوع مسیح خاص خاص اس عورت کے لیے اس شہر سے ہو کر جو سامریا کہلاتا ہے گیا، جس میں بہت سے یہودی جاتے ہی نہیں تھے۔ یہودی سامریا سے گزر کر یہودیا میں نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ لمبا گیڑا لگاتے تھے، وہ زیادہ میل سفر کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس شہر میں سے گزر کر نہیں جاتے تھے۔ سو یہاں پر یسوع مسیح وہاں سے جب ان سے گفتگو کرتا ہے تو عبادت خانہ میں جاتا ہے، اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ 10 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تھا جو درست نہیں تھا، جو بیماری میں، ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو، ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو، کیسے ہو، ٹنڈا کہہ سکتے ہیں، سوکھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ مکمل نہیں ہے، اس میں صحت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے جب وہ چلتا ہو تو عجیب سا اس کا کیا کرتا ہو، اس کا ہاتھ دکھنے میں نظر آتا ہو۔ سو یہ بندہ جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے وہ ہیکل میں وہاں پر ہے اطمینان اور تسلی پانے کے لیے، لیکن فقی فریسی تسلی اور اطمینان کا نہیں بلکہ الزام کا کیا کرتے ہیں، نتیجہ بنتے ہیں۔ وہ الزام لگانے والوں میں ہے، نہ کہ تسلی دینے والوں میں۔ آج بہت سے گرجا گھر میں لوگ آتے ہیں تسلی پانے کے لیے، لیکن بہت دفعہ پاسبان ان پر عیب جوئی، ان پر الزام لگاتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ گریس بائبل چرچ پاکستان میں شرابی، جواریے، گناہگار، جھوٹے، قرضئی، قرضہ دینے والے، ہر طرح کا گناہگار آئے اور آپ میں سے کوئی بھی اس پر الزام نہیں بلکہ ان کے لیے تسلی اور حوصلہ اور رہائی اور ان کی درست راہ کا وسیلہ بنے، تب ہمارا مقصد پورا ہوگا اس گرجا گھر کو تعمیر کرنے کا۔ گرجا گھر گناہگاروں کے لیے ہے، کھوئے ہوئوں کے لیے ہے، پیاسوں کے لیے ہے، ان کے لیے جن کا کوئی نہیں، ان کو مسیح کی خبر دینے کے لیے ہے، جواریوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، شرابیوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، نکموں کے لیے، لاچاروں کے لیے، اس دنیا کے رد کیے ہوئے فقیروں کے لیے، ہر طرح کے گمراہ لوگوں کے لیے۔ میری دعا ہے کہ آپ جب کوئی ایسا بیٹی بیٹا، ایسا شخص گرجا گھر میں آتا ہے جس کے کپڑے اچھے نہیں، جس نے داڑھی نہیں بنوائی، یا جس کی صورت اچھی نہیں، یا جسمانی طور پر وہ کمزور ہے، اس کا وہ لگا کر چلتا ہے، وہ بڑھ بڑھاتا ہے، یا وہ کانا ہے، یا وہ اندھا ہے، یا وہ بہرا ہے، یا وہ گنگا ہے، تو آپ اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر اس پر الزام لگانے والے نہیں بلکہ उसके लिए रहम और तर्स का बायस बने। सो यहां पर एक आदमी है जो हैकल में है, जिसका हाथ सूखा हुआ है, और फरीसियों को देखते हैं क्या करते हैं। फरीसी क्या करते हैं, उन्होंने उस पर अल्जाम लगाने के अरादा से, दसवीं आयत, फरीसी यसु मसीह पर अल्जाम लगाने के अरादा से ये सवाल पूछते हैं कि सब्बत के दिन शफा देना रवा है या नहीं। बहुत दफा यसु मसीह से सवाल किया जाता है लेकिन यसु मसीह जवाब नहीं देता, क्योंकि यसु मसीह उनके दिलों से वाकिफ है। यसु मसीह से बार बार सवाल किए गए लेकिन बहुत कम दफा यसु मसीह जवाब देता है, जैसे ए उस्ताद तू क्या कहता है इस औरत के बारे में, क्योंकि मूसा की शरीयत के मुताबिक ये ऐन फेल वक्त के वक्त गुनाह में जिना में पकड़ी गई है, इसकी सजा संसार है इसे पत्थरों से मारा जाए, तू क्या कहता है। यसु मसीह उनको जवाब नहीं देता बल्कि उनको सच बताता है, इससे पहले पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। फिर और जगह पर यसु से पूछते हैं यसु को फंसाने के लिए कि कैसर को जजिया देना या खराज देना या मसूल देना रवा है या नहीं। यसु मसीह उस दौर का सिक्का उठाकर कहता है किस पर किसकी तस्वीर बनी है, कैसर की। और उनको जवाब यसु मसीह दुरुस्त सवाल करते उनके उनके गलत जवाब का उनको दुरुस्त जवाब देता है। वो जो फंसाने के लिए उसको कहते हैं वो यसु मसीह उनको सच बताता है, जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। सो यहां पर भी यसु मसीह वो उससे सवाल करते हैं कि शफा देना रवा है या नहीं, फंसाने के लिए, अल्जाम लगाने के लिए। आपसे भी बहुत से लोग सवाल करेंगे आपको जांचने के लिए कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं, आपको फंसाने के लिए, इसलिए समझदारी से सुने। तो यसु मसीह से वो सवाल पूछते हैं कि सब्बत के दिन शफा देना रवा है, और यसु मसीह उनके सवाल पर उनसे सवाल करता है। उसने उनसे कहा, यसु ने फरीसियों से कहा, तुम में ऐसा कौन आदमी है, कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन घड़े में, कुएं में या किसी खतरे की जगह पर या पहाड़ से गिर जाए, मिसाल के तौर पर, तो क्या तुम वहां पर उसे देखते रहोगे या फिर उसे बचाओगे। तो यीशु ने उनसे सवाल किया और वो उसके सवाल का जवाब ना दे सके, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि उस दौर के मुताबिक, आपको याद है कि मुसर बेटे की कहानी से पहले 99 भेड़ों की कहानी का जिक्र मिलता है कि एक आदमी जिसकी 99 भेड़े थी और एक खो गई, और वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है। क्यों? उस दौर में अगर कोई चरवाहा जिसकी भेड़, अगर कोई मालक जिसकी भेड़ खो जाए तो उस दौर में उसे अच्छा नहीं बल्कि उसे गैर जिम्मेदार समझा जाता था। उसे समझा जाता था कि ये बंदा इज्जत के लायक नहीं, तबार के लायक नहीं, यकीन के लायक नहीं, क्योंकि ये अपनी भेड़ों की फिक्र देखभाल सही तरीके से नहीं कर सकता। सो यसु मसीह ने उस दौर के मुताबिक उनसे पूछा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड़े में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले। उनसे यसु मसीह सवाल करता है कि तुम्हारी चीज जो बहुत अहम है, जो दुनियावी भेड़ है, जो तुम्हारा जानवर, जो तुम्हारा वसीला है दूध का, जो तुम्हारा वसीला है उससे बच्चे पैदा होंगे तो तुम्हें रुपया पैसा मिलेगा, जो तुम्हारे लिए इनकम का और गुजर बसर का वसीला है, अगर तुम उसे जिबा करोगे और खाओगे तो तुम्हारे लिए गोश्त होगा, उसकी खाल से तुम अपने कपड़े बनाओगे। उनसे सवाल पूछता है कि जो तुमसे तुमको बहुत अहम है उसके लिए तुम क्या करोगे। सवाल है कि हां, भेड़ को बचाने के लिए, अगर आपकी गाय है या आपकी भैंस है या आपका साइकिल है या आपका घर है, आप अपने घर को, अपने बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। सो यसु मसीह ने उनसे यह सवाल किया और जवाब क्या है, वो सब कुछ करेंगे। सो यसु मसीह ने आगे क्या कहा, पस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और मेरे रूहानी बच्चों। इस बात पर गौर करें, हमारी कदर इस भेड़ से कहीं ज्यादा है। यीशु मसीह का हैकल में जाना, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था। हम जो उसकी खोई हुई भेड़ें थे, आदम के उस गुनाह के बायस खुदा से दूर हो चुके थे और कोई वापसी का रास्ता नहीं था, यीशु मसीह हम सब के लिए रास्ता बना ताकि हम खुदा तक दा वापस जा सकें। यीशु मसीह ही वो अच्छा चरवाहा है जो एक भेड़ के लिए रात के काले अंधेरे में, जंगलों में, पहाड़ों में जाता है और उस भेड़ को वापस लाता है। यीशु मसीह ही वो शख्स है जिसने देखा कि इस खेत में बहुत कीमती जेवरात है, उस खेत की कीमत बहुत ज्यादा है और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया ताकि उस खेत में जो खजाना है उसे हासिल कर ले। ये खेत दुनिया है और वो खजाना आप और मैं है कि यीशु मसीह ने अपना सब कुछ लुटा दिया और इसीलिए यीशु मसीह यहां पर कहता है, पस आदमी की कदर तो भेड़ से कहीं ज्यादा है। आपकी और मेरी कदर बहुत ज्यादा है। उस सूखे हाथ वाले आदमी की कदर बहुत ही ज्यादा था जो सताया गया था, जिस पे बुड़बुड़ाया गया था, जिसे बहुत से नामों से पुकारा गया था, जिसका मजाक उड़ाया गया था। आपकी और मेरी कदर खुदा के हजूर बहुत ज्यादा है। जैसे मत्ती की अंजील जब हम उसके छठे बाब को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें, उसकी 25 और 26वीं आयत में ये बात यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही, उन तमाम लोगों से कही जो पहाड़ के सामने खड़े हैं। 25वीं आयत में लिखा है, मत्ती 6 बाब उसकी 25वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना कर कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की के क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? आसमान का खुदा, उन आसमान की तमाम परिंदों और चिरिंदों को बनाने वाला खुदा, उसके हजूर आपकी और मेरी कदर बहुत ज्यादा है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमारी कदर इतनी ज्यादा थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी शान और शौकत छोड़ दी और खुदा ने हम पर अपनी मोहब्बत कुछ इस तरह जाहिर की। मेरे साथ देखे रोमियो 5 बाप उसकी 6 और 7-8 आयत, रोमियो 5 बाप उसकी 6 आयत से 8 आयत तक लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। हम कमजोर, लाचार, उस सूखे हाथ वाले आदमी की मानद हम पर बहुत से इल्जाम लगाए गए थे, हम गुनाहगार थे, हम नकम्मे थे। हम सबको खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? बेदीन जानते हुए हम सबके लिए सलीब पर अपनी जान दे दी। अगर आज आप यीशु मसीह के बगैर हैं, अगर आज आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो ये मौका है। यीशु, मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, लाती हूं और हमेशा की जिंदगी का वारिस आप बन सकते और सकती हैं। और 7वीं आयत में लिखा है, किसी रासबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर किसी नेक आदमी के लिए, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान देने की जरूरत करे। अगर कोई बंदा जिसने गलती नहीं की तो हम उसकी गवाही या उसके लिए जान देने के लिए बहुत कम लोग खड़े होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हम जो बीमार थे, लाचार थे, खोए हुए थे, हम सब के लिए इतनी जरूरत की कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। और 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। आपकी और मेरी खातर। और इस हैकल में जब यीशु मसीह जाता है तो यीशु मसीह उस आदमी की हालत को देखता है, उसकी जान को, उसकी कदर को देखता है जिसके लिए मसीह इस जमीन पर आया। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरे साथ देखें एक और हवाला, दूसरा करंथियों उसका 8 बाप उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो। खुदावंद के फजल को जानने का राज, उसका सबूत क्या है कि वो अगरचे दौलतमंद था, उसको आसमानी शोहरत, करोड़ों अरबों फरिश्ते उसे सजदा करते थे, उसकी जय जय रात और दिन करते थे, उसे हालेलुया, उसे कदूस कदूस कहकर पुकारते थे, वो जो अगरचे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातर, मेरी खातर, पूरी दुनिया की खातर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। इतनी ज्यादा खुदावंद में हमारी कदर है। लेकिन फकी फरीसी इस दौर के राज के अल्जाम लगाने वाले इसी साजिश में हैं कि यीशु पर अल्जाम लगाएं, यीशु के मानने वालों पर अल्जाम लगाएं। भाई और बहनों, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आज आप कमजोर हैं तो यीशु मसीह में जोरावर बने, क्योंकि उसका फजल ही हम सब के लिए काफी है। आपकी और मेरी कदर उसमें बहुत ज्यादा है कि उसने हर तरह का बर्ताव सहा, शर्मिंदगी सही, अपने मुंह पर थकवाया, अपनी दाढ़ी को नचवाया, अपनी पसली पर नेजा खाया, अपनी कमर को उसने कोड़ों से छली होने के लिए दे दिया आपकी और मेरे लिए। इतनी ज्यादा कदर है आपकी और मेरी। तो यीशु ने कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जिसकी एक ही भेड़ हो और उसे बचाने के लिए वो उसे ना बचाए। सब्बत को नेकी करना रवा है, गुनाह करना रवा नहीं है। हमारे लिए हर रोज सब्बत का दिन है। हम हर रोज नेकी करें, रूहों को बचाएं, रूहों की तरक्की चाहें। आए हम खुदा के जूर झुकें और इस मौजजे से जो खुदा यीशु मसीह ने किया, हम दूसरी रूहों तक इस मौजजे को लेकर जाएं, उन टूटे हुए और लाचारों और नकम्मों और बेबस लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, तेरे हजूर आता हूं। अगर आज कोई हौसला छोड़े हुए है तो उसका हौसला बढ़ा। आज इस कहानी के वसीला से वो जान जाए, वो तेरी बेटी, वो तेरा बेटा, के तू हम सब के लिए सलीब पर मुआ। हमारी कदर आसमान के परिंदों से, जमीन के खजानों से बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए तूने अपने आप को गरीब बना दिया ताकि हम तुझ में दौलतमंद हो जाएं। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं। आमीन।